भाभी, क्या भाभी, मुझे कुछ ना कहो, कुछ कहना है तो मेरे देवर से कहो, जो साथ नहीं ले जा सकते तो ये बार बार दूर जाने वाला सिलसिला बंद करें। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी प्यारी सी देवरानू मेरे देवर के इंतजार में तड़पती रहे।
सिर्फ देवरानी तड़पती है क्या?
सुना भाभी? हाँ सुना। चलो बताओ, कितने दिनों के लिए जा रहे हो?
तो 2 महीने के लिए, पर जल्द आ जाऊंगा, बीच बीच में आता रहूंगा।
भाभी माँ, पाखी की ओर देखते, बात भी रोज करूंगा। ये सुन पाखी मुस्कुरा उठी, पर उसकी पलखें फिर से भीग उठी। ये देख देवांश से वहां पर रुका नहीं गया।
भाभी माँ, मेरी पाखी का ख्याल रखना, कह वो चला गया। उसके जाते ही पाखी रो पड़ी। माया जी उसे अपने गले से लगा लेती हैं।
बस बस, संभालो पाखी, देवांश ने कहा है ना, वो जल्द आ जाएगा। पर पाखी का रोना बंद ना हुआ, माया जी उसे संभाल रही थीं। कमरे के बाहर खड़ा देवांश पाखी का रोना सुन उदास हो गया। उसका मन कर रहा था वो पाखी से दूर ना जाए, अभी उसके पास जाकर उसको अपने सीने से लगा ले, पर आज वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था। खाकी वर्दी में था, उसका फर्ज उसको अपनी तरफ खींच रहा था, एक जिम्मेदारी जो उसको सौंपी गई थी, उसे जिसको उसको निभाने दिल्ली से मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके में जाना था जो फिलहाल खतरे से खाली न था और वो अपराधियों का आतंक फैला हुआ था। कल तक देवांश पाखी के साथ हर पल बिताने की बातें कर रहा था और आज सुबह ही सीनियर के ऑर्डर पर उसे ड्यूटी के लिए जाना पड़ रहा था। देवांश का भी मन भर आया, उसने खुद को संभाला और छलकती आंखें पहुंचते पाखी के बारे में सोचते गंभीर भरे लहजे में खुद से बोला,
बस देवांश बस, अब तुझे स्थायी पोस्टिंग लेनी ही होगी, दिल्ली में हो जाए तो अच्छा है, वरना ऐसी जगह जहां पाखी मेरे साथ रह सके। अब ना तो मैं अपनी पाखी से दूर रह सकता हूँ और ना उसे रख सकता हूँ, हर बार उसे यूं छोड़कर जाना मुझसे अब नहीं होता। पाखी जिंदगी है मेरी, उसके प्रति भी मेरे फर्ज हैं, मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा, पाखी की खुशी भी देखनी होती है। सही कहा था कल भाभी माँ ने, एक जगह टिकने का सोचो, जो सुबह जाओ ड्यूटी पर तो शाम को घर आ सको। पाखी भी अब मेरी जिम्मेदारी है और अब एक जिम्मेदारी के चलते दूसरी जिम्मेदारी छोड़ना सही नहीं, जरूरी तो दोनों ही है ना, जल्द कुछ करना होगा इस बारे में। आई एम सॉरी पाखी, बट आई प्रॉमिस ये आखिरी बार है, आखिरी बार। इतना कह वो वहां से चला गया। नीचे आया तो प्रताप जी उसका इंतजार कर रहे थे। देवांश ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। चलता हूँ भाई साहब, प्रताप जी मुस्कुराते हाँ में सिर हिलाते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना, पाखी की चिंता मत करना, हम हैं यहाँ, उसका पूरा ध्यान रखेंगे।
जी भाई साहब, आप हैं, भाभी माँ है, तभी तो उसे छोड़कर चला जाता हूँ, बेफिक्र रहता हूँ, जानता हूँ आप पाखी का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, कह वो प्रताप जी के गले लग गया। ये देवांश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, 2 दिन से बात भी नहीं हुई। देवांश एक बार फोन उठा लीजिए मेरा, पता तो चले आप ठीक हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, एक बार अपनी आवाज़ सुना दीजिए, बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। बड़बड़ाते पाखी देवांश को फोन लगाते रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि तभी देवांश की आवाज़ आई, पाखी। आवाज़ सुनते ही पाखी के कदम रुक गए, उसने फट से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा जहां देवांश खड़ा था, खून से लथपथ और चोटिल। जैसे ही पाखी ने देवांश की तरफ देखा, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा और वो जोर से चिल्ला उठी, देवांश। देवांश की जख्मी हालत देख पाखी दौड़ी उसके पास चली आई। देवांश, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, ये खून, ये चोट, कैसे हुआ ये सब, बोलिए देवांश, कैसे लगी ये चोट आपको, आप ठीक हैं? पाखी देवांश को छूते, उसकी ओर देखते घबराई सी परेशान सी बोले जा रही थी, पर देवांश कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस पाखी को देख जा रहा था। तभी पाखी ने देवांश के गाल पर हाथ रखा और वो नम आंखें लिए प्यार से पूछा, देवांश बोलिए ना, आप ठीक है ना, डर लग रहा है मुझे, आपकी ये हालत कैसे हुई? कि तभी देवांश ने उसे हक कर लिया। थोड़ी देर बाद देवांश बेड पर आंखें मूंद कर लेटा था, पाखी उसके सिरहाने बैठी उसका सिर सहला रही थी। देवांश, पाखी ने उसे पुकारा तो देवांश आंखें होल पाखी की ओर देखता है। देवांश की नम आंखें देख पाखी ने उसकी तरफ बाहें फैला दी, वो उसी पल अपना सिर पाखी की गोद में रख लेता है और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटते हुए उससे लिपट जाता है। पाखी उसे संभालते समझाती है, संभालिए देवांश, जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, आपने तो पूरी कोशिश की थी उन्हें बचाने की, पर उन्होंने ही खुदकुशी का रास्ता चुन लिया, उसमें आप क्या ही कर सकते थे। देवांश पाखी से लिपटा, मैं बचा सकता था उन्हें। देवांश आक्षी को अपने और पाखी के रिश्ते के बारे में बता रहा था, जिसे आक्षी बड़े भी ध्यान से सुन रही थी। जब देवांश ने कहा मैं बचा सकता था उन्हें, तो वो सवाल कर बैठी, किसे बचा सकते थे आप, किस बारे में आप अपनी वाइफ को बता रहे थे, और आप तो मध्य प्रदेश गए हुए थे ना, और आपकी 2 दिन से बात क्यों नहीं हुई थी पाखी से। देवांश कुछ सोचते हुए, हाँ मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था, वहां मैं एक केस देख रहा था जो बहुत पेचीदा था, उसमें बिजी होने के कारण मैं 2 दिन पाखी से क्या किसी से भी बात नहीं कर पाया, जिसके चलते सब परेशान हो गए थे, पाखी सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब मेरी और पाखी की इतने वक्त बात नहीं हुई थी, वरना ऐसा था सुबह नहीं तो रात को, रात नहीं तो दोपहर शाम को हम दोनों की बात हो ही जाती थी, चाहे कॉल पर या फिर मैसेजेस के जरिए। और तो और, जिस इलाके में मैं ड्यूटी पर था वहां नेटवर्क खराब थे, उन 2 दिनों में तो नेटवर्क इतना बेकार, बहुत ज्यादा खराब था, जिसके चलते मैं पाखी को इन्फॉर्म नहीं पाया कि मैं ठीक हूँ, और ना ही जान पाया वो कैसी है। केस हैंडल कर मैं फ्री हुआ तो मुझे पाखी के पास आना था, वो भी जल्द से जल्द, वो मेरा वेट कर रही थी और मुझे भी जल्दी थी, इस चक्कर में मैं अपना फोन वहीं भूल आया, जिसका मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे बस चल चल अपनी बाकी अपनी बीवी के पास आना था। बहुत दिन हो गए थे उससे दूर गए, उससे ठीक से बात किए। दिल्ली आते ही मैं अपने एक जान पहचान वाले आदमी के साथ अपने घर की तरफ चल दिया, जो अपनी गाड़ी से मुझे घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में हमने देखा कुछ लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो चार लड़के, जिनमें से दो लड़के उस लड़की के पिता को बेरहमी से मार रहे थे और दो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो चीख रही थी, बुरी तरह से चिल्ला भी रही थी, पर उन लड़कों को उस पर तरस नहीं आ रहा था और ना ही उसके पिता पर, जिसे वो बुरी तरह से जख्मी कर चुके थे। उसे और मारते हुए उसकी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।